नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट वर्ल्ड्स ग्रेट लिटरेचर में। मैं हूं आपका कहानी वाला लड़का सिद्धांत। इस पॉडकास्ट में आप सुनते हैं दुनिया भर के महान राइटर्स की कल्पना और कलम से निकली कुछ खूबसूरत, रोचक, रोमांचक, कभी दिल को छूने वाली तो कभी सिरहन पैदा करने वाली अमर कहानियां और हल्का सा राबता राइटर के साथ। तो चलिए देखते हैं क्या है हमारे आज के पिटारे में। दोस्तों, आज जिस शख्सियत की मैं बात करने वाला हूँ उनका नाम सादत हसन मंटो, राजेंद्र सिंह बेदी और कृष्ण चंद्र के साथ आधुनिक उर्दू फिक्शन का चौथा सतून माना जाता है। बदनामी और शोहरत, विवाद और लोकप्रियता के एतबार से वो उर्दू की किसी भी अफसाना निगार से आगे अद्वितीय और मुमताज है। उनकी शख्सियत और उनका लेखन एक दूसरे का पूरक है और जो बगावत, अवज्ञा, सहानुभूति, मासूमियत, ईमानदारी, अल्लड़पन और शगुफ्ता अक्खड़पन से इबारत है, उन्होंने अपने चौंका देने वाले विषयों, लेखन की यथार्थवादी शैली और अपनी अनूठी शैली के आधार पर उर्दू अफसाना और नॉवल निगारी की तारीख में अपने लिए एक अलग पहचान बनाई। मानव जीवन की छोटी छोटी घटनाएं उनके अफसानों का विषय हैं, लेकिन वो उन घटनाओं को इस चाबुक दस्ती और फनकारी से पेश करती हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी की मुकम्मल और जीती जागती तस्वीर निगाहों के सामने आ जाती है। उन्होंने अपने किरदार के द्वारा जिंदगी की बुराइयों को बाहर निकाल फेंकने और उसे हुस्न, मसर्रत और सुकून की आकृति बनाने की कोशिश की। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इस्मत चुगताई जी की। इस्मत आपा 21 अगस्त 1915 को उत्तर प्रदेश के शहर बदायूं में पैदा हुई। उनके वालिद मिर्जा कसीम बेग चुगताई एक उच्च सरकारी पदाधिकारी थे। इस्मत आपा अपने 9 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। जब उन्होंने होश संभाला तो बड़ी बहनों की शादियां हो चुकी थीं और उनको बचपन में सिर्फ अपने भाइयों का साथ मिला, जिनकी बढ़तरी को वो लड़ झगड़ का चैलेंज करती थी। गुल्ली डंडा और फुटबॉल खेलना हो या घुड़सवारी और पेड़ों पर चढ़ना, वो हर वो काम करती थी जो लड़कियों के लिए मना थे। उन्होंने चौथी जमात तक आगरा में और फिर 8वीं जमात अलीगढ़ के स्कूल से पास की, जिसके बाद उनके माता पिता उनकी आगे की शिक्षा के हक में नहीं थे और उन्हें एक सलीकामंद गृहस्थ औरत बनाने की दीक्षा देना चाहते थे। लेकिन इस्मत आपा को उच्च शिक्षा की धुन थी। उन्होंने धमकी दी अगर उनकी तालीम जारी न रखी गई तो वो घर से भागकर ईसाई बन जाएंगी और मिशन स्कूल में दाखिला ले लेंगी। आखिर उनकी जिद के सामने वालिद को घुटने टेकने पड़े और उन्होंने अलीगढ़ जाकर सीधे 10वीं में दाखिला ले लिया और वहीं से एफए का इम्तिहान पास किया। अलीगढ़ में उनकी मुलाकात रशीद जहां से हुई, जिन्होंने 1932 में सज्जाद जहीर और अहमद अली के साथ मिलकर कहानियों का एक संग्रह अंगारे के नाम से प्रकाशित किया था, जिसको अश्लील और क्रांतिकारी ठहराते हुए हुकूमत ने उस पर पाबंदी लगा दी थी और उसकी सारी प्रतियां जब्त कर ली गई थी। रशीद जहां उच्च शिक्षा प्राप्त MBBS डॉक्टर आजाद ख्याल, पिछड़े और शोषित महिलाओं के अधिकारों की अलमबरदार कम्युनिस्ट विचारधारा रखने वाली महिला थी, उन्होंने इस्मत आपा को कम्युनिज्म के आधारभूत मान्यताओं से परिचय करवाया और इस्मत आपा ने उनको अपना गुरु मानकर उनके नक्शे कदम पर चलने का फैसला किया। इस्मत कहती है, मुझे रोती बिसुरती हराम के बच्चे जनती मातम करती स्त्रीत्व से नफरत है। वफा और जुमला खूबियां जो औरत का जेवर समझी जाती हैं, मुझे लालच महसूस होती है। भावनाओं से मुझे सख्त कोफ्त है। इश्क मजबूत दिलो दिमाग है, ना कि जी का रोग। ये सब मैंने रशीद आपा से सीखा। इस्मत आपा औरतों की दुर्दशा के लिए उनकी निरक्षरता को जिम्मेदार समझती थी। उन्होंने एफए के बाद लखनऊ के IIT कॉलेज में दाखिला लिया, जहां उनके विषय अंग्रेजी, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र थे। IIT कॉलेज में जाकर उनको पहली बार आजाद फिजा में सांस लेने का मौका मिला और वो मध्यम वर्ग के मुस्लिम समाज की तमाम जकड़बंदियों से आजाद हो गईं। इस्मत आपा ने 11 बरस की ही उम्र से कहानियां लिखना शुरू कर दी थी, लेकिन उन्हें अपने नाम से प्रकाशित नहीं कराती थी। उनकी पहली कहानी 1939 में फसादी शीर्षक से प्रतिष्ठित साहित्यिक पत्रिका साकी में प्रकाशित हुई तो लोगों ने ख्याल किया कि उनके भाई प्रसिद्ध अदीब अजीम बेग चुगताई ने फर्जी नाम से ये कहानी लिखी है। उसके बाद जब उनकी कहानियां काफिर, खिदमतगार, ढीट और बचपन उसी साल प्रकाशित हुई तो साहित्यिक गलियारों में खलबली मची। और इस्मत आपा ने एक प्रसिद्ध अफसाना निगार की हैसियत से अपनी पहचान बना ली। उनकी कहानियों के दो संग्रह कलियां और चोटे 1941 और 1942 में प्रकाशित हुए, लेकिन उन्होंने अपनी अदबी जिंदगी का सबसे बड़ा धमाका 1941 में लिहाफ लिखकर किया। दो औरतों के आपसी यौन संबंधों के विषय पर लिखी गई इस कहानी से अदबी दुनिया में भूचाल आ गया। उन पर अश्लीलता का मुकदमा कायम किया गया और उस पर इतनी बहस हुई कि ये अफसाना सारी जिंदगी के लिए इस्मत की पहचान बन गया। और उनकी दूसरी अच्छी कहानियां जैसे चौथी का जोड़ा, गेंदा, दोहा, जड़े, हिंदुस्तान छोड़ो, नन्नी की नानी, भूल भुलैया, मसास और बिच्छू फूफी लिहाफ में दबकर रह गए। आईटी कॉलेज लखनऊ और अलीगढ़ से बीटी करने, विभिन्न स्थानों पर अध्यापन करने और कुछ घोषित धुआंधार इश्कों के बाद इस्मत ने बम्बई का रुख किया, जहां उनको इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स की नौकरी मिल गई। बम्बई में शाहिद लतीफ भी थे, जो पौने 200 रुपए मासिक पर बम्बई टॉकीज में संवाद लिखते थे। शाहिद लतीफ से उनकी मुलाकात अलीगढ़ में हुई थी, जहां वो एमए कर रहे थे और उनके अफसाने अदब लतीफ आदि पत्रिकाओं में प्रकाशित होते थे। बम्बई पहुंचकर उन दोनों का तूफानी रोमांस शुरू हुआ और दोनों ने शादी कर ली। मोहब्बत के मामले में इस्मत आपा का रवैया बिल्कुल अपारंपरिक था। उनका कहना था, मैं मोहब्बत को बड़ी जरूरी और बहुत अहम शय समझी हूँ। मोहब्बत बड़ी मजबूत दिलो दिमाग शय है, लेकिन उसमें लीचड़ नहीं बन जाना चाहिए, अटवाटी खटवाटी नहीं लेना चाहिए, खुदकुशी नहीं करनी चाहिए, जहर नहीं खाना चाहिए। और मोहब्बत का जीन से जो ताल्लुक है वो स्वाभाविक है। वो जमाना लद गया जब मोहब्बत पाक हुआ करती थी, अब तो मोहब्बत नापाक होना ही खूबसूरत माना जाता है। इसलिए जब शाहिद लतीफ ने शादी का प्रस्ताव रखा तो इस्मत आपा ने कहा, मैं गड़बड़ किस्म की लड़की हूँ, बाद में पछताओगे। मैंने सारी उम्र जंजीरें काटी हैं, अब किसी जंजीर में जकड़ी न रह सकूंगी। फरमा बरदार पाकीज़ा औरत होना मुझ पर सस्ता ही नहीं। लेकिन शाहिद ना माने। शाहिद लतीफ के साथ अपने ताल्लुक के बारे में वो कहती हैं, मर्द औरत को पूछकर देवी बनाने को तैयार है। वो उसे मोहब्बत दे सकता है, इज्जत दे सकता है, सिर्फ बराबरी का दर्जा नहीं दे सकता। शाहिद ने मुझे बराबरी का दर्जा दिया। बराबरी के उस दर्जे की असास मुकम्मल दो तरफा आजादी थी। उसमें जज्बाती ताल्लुक का कितना दखल था, उसका अंदाजा इस बात से हो सकता है कि जब 1967 में शाहिद लतीफ का दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हुआ और डॉक्टर सफदर आहा इस्मत से हमदर्दी का इजहार करने उनके घर पहुंचे तो इस्मत ने कहा, ये तो दुनिया है डॉक्टर साहब, यहाँ आना जाना तो लगा ही रहता है। जैसे इस ड्राइंग रूम का फर्नीचर, ये सोफा टूट जाएगा तो हम इसे बाहर निकाल देंगे, फिर उस खाली जगह पर कोई दूसरा सोफा पूरा कर देगा। शाहिद लतीफ ने इस्मत को फिल्मी दुनिया से परिचय कराया था। वो स्क्रीन राइटर से फिल्म प्रोड्यूसर बन गए थे। इस्मत उनकी फिल्मों के लिए कहानी और संवाद लिखती थी। उनकी फिल्मों में जिद्दी, आरजू और सोने की चिड़िया बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई। उसके बाद उनकी फिल्में नाकाम होती रहीं। शाहिद लतीफ की मौत के बाद भी इस्मत फिल्मी दुनिया से संबद्ध रही। विभाजन के विषय पर बनाई गई लाजवाब फिल्म गर्म हवा इस्मत की ही एक कहानी पर आधारित है। श्याम बेनेगल की दिल को छू लेने वाली फिल्म जुनून के संवाद इस्मत ने लिखे थे और एक छोटी सी भूमिका भी की थी। इनके अलावा इस्मत आपा जिन फिल्मों से संबंध रही उनमें छेड़छाड़, शिकायत, बुजदिल, शीशा, फरेब, दरवाजा, सोसाइटी और लाला रुख शामिल हैं। इस्मत चुगताई एक विपुल लेखिका थी। उन्होंने अपने अर्ध आत्मपरक उपन्यास टेढ़ी लकीर 7-8 दिन में इस हालात में लिखा कि वो गर्भवती और बीमार थी। उस उपन्यास में उन्होंने अपने बचपन से लेकर जवानी तक के अनुभवों व अवलोकनों को बड़ी खूबी से समाया है और समाज की धार्मिक, सामाजिक और वैचारिक अवधारणाओं के सभी पहलुओं की कड़ाई से नुक्ताचीनी की है। उनके 8 उपन्यास में से इस उपन्यास का वही स्थान है जो प्रेमचंद के उपन्यासों में गोदान का है। उनके दूसरे उपन्यास जिद्दी, मासूमा, दिल की दुनिया, एक कतरा खून, बहरूप, सौदाई, जंगली कबूतर, अजीब आदमी और बांदी है, वो खुद दिल की दुनिया को अपना बेहतरीन उपन्यास समझती थी। इस्मत को उनकी साहित्यिक सेवाओं के लिए सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं की तरफ से कई महत्वपूर्ण सम्मान और इनाम मिले। 1975 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री का खिताब दिया। 1990 में मध्य प्रदेश शासन ने उन्हें इकबाल सम्मान से नवाजा। उन्हें गालिब अवार्ड और फिल्म फेयर अवार्ड भी दिए गए। आधी सदी तक अदब की दुनिया में रोशनियां बिखेरने के बाद 24 अक्टूबर 1991 को वो नश्वर संसार से कूच कर गईं। और उनकी वसीयत के मुताबिक उनके पार्थिव शरीर को चंदनवाड़ी विद्युत शमशान घाट में अग्नि के सुपुर्द कर दिया गया। तो दोस्तों, आज सुनते हैं इस्मत आपा की लिखी कहानी काम चोर। बड़ी देर के बाद वाद विवाद के बाद ये तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं, हिलकर पानी नहीं पीते, इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। कामचोर कहीं के,
तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो और सारा दिन उधम बचाने के सिवा कुछ नहीं करते।
और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते, हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है। इसलिए हमने तुरंत हिल हिलाकर पानी पीना शुरू किया। हिलाने में धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के दबैल तो थे नहीं कि कोई धक्का दे तो सह जाए। लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। सुराइयां उधर लुढ़की, मटके इधर गए, कपड़े भीगे सो अलग।
ये भला काम करेंगे,
अम्मा ने निश्चय किया।
अरे करेंगे कैसे नहीं, देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा, समझे।
ये लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहे हैं, हम काम करने को तैयार हैं, काम बताए जाए। हमने दुहाई दी।
अरे बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो, मिसाल के लिए ये दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है। और भाई, मुफ्त तो ये काम करवाए नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह मिलेगी।
अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। माली को तनख्वाह मिलती है अगर सब बच्चे मिलकर पानी डालें तो।
हाँ, खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी,
अम्मा ने याचना की। फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने पकड़कर झटकना शुरू कर दिया। दो चार ने लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। सारा घर धूल से अट गया, खांसते खांसते सब बेदम हो गए। सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सिरों पर जम गई, नाकों और आंखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाला गया। वहां हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया। झाड़ू क्योंकि एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत, इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। जितनी सीखे जिसके हाथ पड़ी वो उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। अम्मा ने सिर पीट लिया, भाई ये बुजुर्ग काम करने दे तो इंसान काम करे। सब जरा जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम। असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। बस ये ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी, पानी पड़ते ही सारा धूल कीचड़ बन गई। अब सब आंगन से भी निकाले गए। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। बस सारे घर की बाल्टियां, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियां लूट ली गई। जिन्हें ये चीज भी ना मिली वो डोंगे, कटोरे और गिलास ही ले भागे। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। यहाँ भी वो घमासान मची कि क्या मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। ठूसम ठास किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने और डोंगे। पहले तो धक्के चले, फिर कुहनियां और उसके बाद बर्तन। फौरन बड़े भाइयों, बहनों, मामुओं और दमदार मौसियों, फूफियों की कुमुक भेजी गई। फौज मैदान में हथियार फेंक कर पीठ दिखा गई। इस झीगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफी नहीं थी। पास के बंगलों से नौकर आए और चार आना प्रति बच्चे के हिसाब से नहलवाए गए। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच ये सफाई का काम अपने बस की बात नहीं और न पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है, कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दें। बस शाम ही से जो बांस छड़ी हाथ पड़ी लेकर मुर्गियां हाँकने लगे, चल दड़बे चल दड़बे। पर साहब, मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। ऊट पटांग इधर उधर कूदने लगी। दो मुर्गियां खीर के प्यालों से, जिन पर आया चांदी के वर्क लगा रही थी, दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर लगी हुई है। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा और कत्थे चूने में लुथड़े हुए पंजे लेकर नानी की सफेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी में इस तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी।
इधर सारी मुर्गियां बेन केल का ऊंट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी। एक भी दड़बे में जाने को राजी ना थी। इधर किसी को सूझी कि जो भेड़े आई हुई हैं, लगे हाथ उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। दिन भर की भूखी भेड़े दाने का सूप देखकर जो सबकी सब झपटी तो भागकर जाना कठिन हो गया। लष्टम पष्टम तख्तों पर चढ़ गईं, पर भेड़ चाल मशहूर है, उनकी नजर तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को फलांगती, बर्तन लुढ़काती साथ साथ चढ़ गईं। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुल्तानी बुआ को कुछ बता रही थी। भेड़े बहुत ही संकोच सबको रौनते मेघने का छिड़काव करती हुई दौड़ गईं। जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बम्बारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हो। जहां जहां से सूप गुजरा, भेड़े शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गई। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढाके सो रही थी। उन पर से जो भेड़े दौड़ी तो ना जाने वो सपने में किन महलों की सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। इतने में भेड़े सूप को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। वो दलान में बैठी मटर की फलियां तोड़ तोड़ कर रसोइये को दे रही थी। वो अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रूई के तकिए को कूट रहे हो। भेड़ को चोट नहीं लगती, बिल्कुल ये समझकर कि आप उससे मजाक कर रहे हैं। वो आप ही पर चढ़ बैठेगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कढ़ाई में झोंक दी। इधर यह प्रलय मची थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी। वे चार भैंसों का दूध दुहने में जुट गए। धुली बेधुली बाल्टी लेकर आठ हाथ चार थनों पर पिल पड़े। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी बांधी जाए और फिर काबू में लाकर दूध धो लिया जाए। बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए गए। पिछले दो पैर चाचा जी की चारपाई के पायों से बांध, अगले दो पैर को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी हो गई। छूटकर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं। साथ में भूचाल भी आया हुआ है। फिर जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चल गया और वो पलंग की दोनों पट्टियां पकड़े बच्चों को छोड़ देने वालों को बुरा भला सुनाने लगे। यहाँ बड़ा मजा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे चाचा जी। ओहो, एक भूल ही हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खोरों का ब्रेक लगा दिया। बछड़ा तत्काल जुट गया। दूने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर बागी हो गया, कुछ दूर जमीन पर और कपड़ों पर गिरा। दो चार धारे गिलास कटोरे पर भी पड़ गई, बाकी बछड़ा पी गया। ये सब कुछ कुछ मिनट के तीन चौथाई में हो गया। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियां, भेड़े, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियां बाग में हकाई गई, मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पोछे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली मायके, अम्मा ने चुनौती दे दी। और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। तो दोस्तों, बस इतनी सी थी ये कहानी। आपको ये कहानी कैसे लगी मुझे बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, हमारे पॉडकास्ट को फॉलो करना ना भूलिएगा और इसे रेट ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर अब आप चाहें तो इस पॉडकास्ट को सपोर्ट भी कर सकते हैं। सपोर्टिंग डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मैं कहानी वाला लड़का सिद्धांत आपको अलविदा करता हूँ।